आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं शगुफ्ता यास्मीन। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने शिमाल मशरकी रियासतों मिजोरम, मणिपुर और असम का दौरा किया और कहा कि शिमाल मशरक मुल्क की तरक्की का इंजन बनता जा रहा है। वजीर आजम ने मणिपुर के शहर इम्फाल में 1200 करोड़ रुपए मालियत के कई तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह किया और कहा कि सरकार रियासत में अमन इस्तेहकाम को यकीनी बनाने की खातिर लगातार काम कर रही है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने गुवाहाटी में डॉक्टर भूपेन हजारिका की 7 साल जयंती की तकरीबात में शिरकत की। म्यांमा के क्याकताओ इलाके में दो प्राइवेट बोर्डिंग स्कूलों पर फौज के फजाई हमले में कम अज कम 19 स्कूली तलबा मारे गए हैं। लक्ष्य सेन हांगकांग सुपर 500 बैडमिंटन टूर्नामेंट में मर्दों के सिंगल्स फाइनल में पहुंच गए हैं और इंग्लैंड में जारी आलमी बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारतीय खातून मुक्केबाजों को 4 तमगे मिलना तय है। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज शिमाल मशरकी रियासतों मिजोरम, मणिपुर और असम का दौरा किया और कई तरक्याती प्रोजेक्टों का आगाज किया। इन प्रोजेक्टों में पहली मरतबा मिजोरम की राजधानी आइजोल को भारतीय रेल नेटवर्क से जोड़ने वाली नई रेल लाइन प्रोजेक्ट भी शामिल है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज मिजोरम में आइजोल के मकाम पर 9000 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत के मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्टों का वर्चुअल वसीले से इफ्तिताह किया और संग बुनियाद रखा। इन प्रोजेक्टों का ताल्लुक मुख्तलिफ शोबों से है जिनमें रेलवे, रोडवेज, तवानाई और खेलों के शोबे शामिल हैं। जनाब मोदी ने 8000 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत के बायराबी साइरंग नई रेल लाइन का भी इफ्तिताह किया जिसकी बदौलत मिजोरम की राजधानी पहली बार भारतीय रेलवे नेटवर्क से मुंसलिक हो गई है। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत दुनिया में सबसे तेज रफ्तार के साथ आगे बढ़ने वाली मईशत है और शिमाल मशरकी खित्ता मुल्क की तरक्की का इंजन बनता जा रहा है। जनाब मोदी ने इस बात को उजागर किया कि मशरकी मुल्कों से राबते बढ़ाने की भारत की पॉलिसी और उभरते हुए शिमाल मशरकी इकतसादी कॉरिडोर दोनों में मिजोरम का अहम रोल है।
दिस इज नॉट जस्ट अ रेलवे कनेक्शन बट इट इज ए लाइफ लाइन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। इट विल रिवोल्यूशनाइज द लाइव्स एंड लाइवलीहुड्स ऑफ द पीपल ऑफ मिजोरम।
वजीर आजम ने कहा कि जीएसटी की नई सिलसिले की इसलाहत हाल ही में लाई गई हैं और इसका मतलब है कि कई अशिया पर टैक्स कम हो जाएगा और लोगों के रहन सहन में सहूलत हो जाएगी। इस मौके पर रेलवे के वजीर अश्विनी वैष्णव ने कहा कि बायराबी साइरंग नई रेल लाइन एक बड़े चैलेंज वाला प्रोजेक्ट था जिसमें 45 टनल और 55 बड़े पुल बनाए गए हैं।
Before 2014, the budget for railway for Northeast was only 2000 crore. Modi ji increased it 5 times to 10,000 crore. That is the Act East policy of Modi ji. Today, railway projects of 77,000 crore rupees are undergoing construction in the entire Northeast.
इससे कबल वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने 3 नई एक्सप्रेस रेलगाड़ियों साइरंग दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस, साइरंग गुवाहाटी एक्सप्रेस और साइरंग कोलकाता एक्सप्रेस को झंडी दिखाकर रवाना किया। जनाब मोदी ने लांगतिलाई स्याहा रोड पर चेम तोयपी रिवर ब्रिज का भी संगे बुनियाद रखा। इस पुल के बन जाने से हर मौसम में आमदोरफ्त की सहूलत हासिल रहेगी और सफर करने में लगने वाला वक्त 2 घंटे कम हो जाएगा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मरकजी सरकार मणिपुर में अमन इस्तेहकाम को यकीनी बनाने की खातिर लगातार काम कर रही है। जनाब मोदी ने आज बेघर होने वाले उन अफराद से मुलाकात की जिन्होंने इम्फाल के जिलों में मुख्तलिफ राहत कैंपों में पनाह ले रखी है। वजीर आजम ने 1200 करोड़ रुपए मालियत के कई प्रोजेक्टों का इफ्तिताह भी किया। इनमें नया सिविल सेक्रेटरिएट, नया पुलिस हेडक्वार्टर, मणिपुर भवन, आईटी के खसूसी इकतसादी जोन की इमारत, खवातीन के मार्केट, सड़क प्रोजेक्ट, हॉस्टल, एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल और बुनियादी ढांचे के दीगर तरक्याती प्रोजेक्ट शामिल हैं।
जो काम आज शुरू हुए हैं उनमें 2 परियोजनाएं बहुत अहम है। मणिपुर अर्बन रोड प्रोजेक्ट जिसकी लागत 3,600 करोड़ रुपए से ज्यादा है और मणिपुर इंफोटेक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जिसकी लागत 500 करोड़ रुपए से ज्यादा है। ये परियोजनाएं इम्फाल में सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करेगी और मणिपुर के उज्जवल भविष्य को नई ऊर्जा से भर देगी।
इम्फाल के तारीखी कांगला फोर्ट में एक जलसयाम से खिताब करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि आवाम के मफादात का तहफ्फुज किया जाना चाहिए और जिन लोगों को राहत कैंपों में रहने पर मजबूर होना पड़ा है वो इस काबिल होने चाहिए कि वो फिर से मामूल की जिंदगी गुजार सकें। जनाब मोदी ने कहा कि रियासत में मुख्तलिफ तबकों के दरमियान तशद्दुद की वजह से बेघर होने वाले कुनबों के लिए 7,000 नए मकानों की मंजूरी दी गई है। उन्होंने बताया कि मरकजी सरकार ने हाल ही में मणिपुर के लिए तकरीबन 3,000 करोड़ रुपए के खसूसी पैकेज का ऐलान किया है। जनाब मोदी ने कहा कि बेघर होने वाले अफराद की मदद के लिए खासतौर पर 500 करोड़ रुपए से ज्यादा मुख्तस किए गए हैं। वजीर आजम ने जोर देकर कहा कि तशद्दुद से मुतासिर अफराद को फिर से मामूल की जिंदगी गुजारने में मदद करना एनडीए सरकार की अव्वलीन तरजीह है। जनाब मोदी ने मणिपुर के लोगों से अपील की कि वो रियासत में कयाम अमन की खातिर आगे आएं और नौजवानों की तरक्की और बहबूद के रास्ते का इंतखाब करें।
मुझे संतोष है कि हाल ही में हिल्स और वैली में अलग अलग ग्रुप के साथ समझौतों के लिए बातचीत की शुरुआत हुई है। मैं सभी संगठनों से अपील करूंगा कि शांति के रास्ते पर आगे बढ़कर अपने सपनों को पूरा करें, अपने बच्चों के भविष्य को सुनिश्चित करें और मैं आज आपको वादा करता हूं, मैं आपके साथ हूं।
वजीर आजम ने जीएसटी की नए सिलसिले की इस्लाहात का भी तस्किरा किया और कहा कि जीएसटी में नुमाया कटौती से मणिपुर के लोगों को दोहरा फायदा होगा और ये कि सरकार ने अवाम के लिए बचत में इजाफा करने और जिंदगी को ज्यादा सहल बनाने का अज्म कर रखा है। जनाब मोदी मणिपुर के एक दिन के दौरे पर आज सुबह इम्फाल पहुंचे। इसके बाद वो चूरा चंदपुर गए और वहां बेघर होने वाले अफराद से मुलाकात की। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आसाम के शहर गुवाहाटी में आज शाम भारत रत्न डॉक्टर भूपेन हजारिका के 100वें यौमे पैदाइश की तकरीबात में शिरकत की। उन्हें खिराज अकीदत पेश करते हुए जनाब मोदी ने भूपेन हजारिका को इत्तेहाद और कौमी यकजहती की अलामत करार दिया। वजीर आजम ने कहा कि हजारिका की मौसीकी ने पूरे भारत के लोगों को बाहम मुंसलिक किया और उनकी रहनुमाई की। जनाब मोदी ने 100 रूपये का यादगारी सिक्का जारी किया और 21 जबानों में भूपेन हजारिका की सवाने हयात की रस्में इजरा अंजाम दी। आसाम के गवर्नर लक्ष्मण प्रसाद आचार्य, वजीर आला हेमंत बिस्व सरमा, अरुणाचल प्रदेश के वजीर आला पेमा खांडू और मरकजी वजीर सर्बानंद सोनोवाल ने भी इस तकरीब में शिरकत की। वजीर आजम नरेंद्र मोदी कल आसाम में 1,800 करोड़ रुपए मालियत के कई प्रोजेक्टों का संगे बुनियाद रखेंगे। जनाब मोदी कल मेडिकल कॉलेज प्रोजेक्टों और दरियाए ब्रह्मपुत्र पर एक नए पुल के आगाज के लिए मंगलडोई जाएंगे। वजीर आजम गोलाघाट में नौमारीगढ़ रिफाइनरी में बांस पर मबनी भारत की पहली बायो रिफाइनरी का इफ्तिताह भी करेंगे। इसके बाद जनाब मोदी जोरहाट से कोलकाता रवाना हो जाएंगे। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। म्यांमा की मगरबी रियासत रखाइन में क्याउकतो इलाके में 2 प्राइवेट बोर्डिंग स्कूलों पर म्यांमा की फौज के फजाई हमले में हाई स्कूल के कम से कम 19 तलबा मारे गए जबकि 20 से ज्यादा जख्मी हुए। अरकान आर्मी और इमदादी एजेंसियों के मुताबिक यह हमला कल रात देर गए उस वक्त किया गया जब तलबा सो रहे थे। मरने वाले तलबा की उम्र 15 से 21 साल के दरमियान बताई गई है। मकामी मीडिया के एक इदारे म्यांमा नाउ ने इत्तला दी कि एक जंगी हवाई जहाज से हाई स्कूल पर 500 पाउंड के 2 बम गिराए गए और इन स्कूलों को शदीद नुकसान पहुंचा। मालूम हुआ है कि ये स्कूल ऐसे इलाके में वाकई हैं जिस पर अरकान आर्मी ने कब्जे का दावा कर रखा है और म्यांमा की सरकार के खिलाफ नबर्दाजमा है। उधर एक बयान में यूनिसेफ ने इस हमले की सख्त मजम्मत की है और इसे एक वहशियाना हमला करार दिया है। भारत ने नेपाल में नई उबूरी सरकार के कयाम का खैर मकदम किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने उबूरी सरकार में वजीर आजम की जिम्मेदारियां संभालने के लिए मोहतरमा सुशीला कर्की के साथ अपनी नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। नेपाल के सदर रामचंद्र पोडेल ने सभी पार्टियों से अपील की है कि वो 5 मार्च 2026 को होने वाले इंतखाबात के कामयाब इनेकाद के लिए तआवुन करें। उन्होंने सभी पार्टियों पर जोर दिया कि अब वो आवाम को मुतमईन करने की खातिर मोहतात तरीके से मनसूबाबंदी के साथ इस मौके का मुनासिब इस्तेमाल करें और अमन सुकून बरकरार रखते हुए मुकर्रा वक्त पर इंतखाबात को यकीनी बनाएं। एक बयान जारी करते हुए सदर रामचंद्र पोडेल ने जोर दिया कि मुल्क में इंतहाई मुश्किल हालात में काफी कोशिशों के बाद एक पुरअमन हल सामने आया है। इस दौरान वजीर आजम सुशीला कार्की हालिया जेंजी मुजाहरों के दौरान जख्मी हुए नौजवानों की सूरत हाल का जायजा लेने के लिए आज मिन भवन में नेशनल ट्रॉमा सेंटर और सिविल सर्विस अस्पताल गईं। इस मौके पर उन्होंने मुल्क की सूरत हाल को तब्दील करने की खातिर ज्यादा से ज्यादा कोशिशें करने के अपने अज्म का इजहार किया। नौजवानों के उमूर और खेलों के वजीर डॉक्टर मनसुख मानविया ने कहा है कि विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग नजरिए को आवाज और आवाज को असर में तब्दील करने की खातिर नौजवानों की क्यादत वाली जमहूरियत की एक हकीकी मिसाल है। आज नई दिल्ली में विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग 2026 पर प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वजीर मौसूफ ने कहा कि ये एक ऐसा वाहिद प्लेटफॉर्म है जहां भारतीय नौजवान न सिर्फ अपने नजरियात शेयर कर सकते हैं बल्कि उन्हें वजीर आजम नरेंद्र मोदी को भी पेश कर सकते हैं। वजीर मौसूफ ने विकसित भारत क्विज का भी आगाज किया और उन्हें मुल्क भर के तलबा और नौजवान शहरियों से इसमें सरगर्मी के साथ शिरकत करने पर जोर दिया।
देश के हर युवाओं को मैं आग्रह करता हूं कि आप माई गव प्लेटफॉर्म पर आइए, क्विज कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेशन करिए और आपका विचार विकसित भारत के लिए प्रधानमंत्री जी के सामने रखने का अवसर प्राप्त करें। इस उद्देश्य के लिए विकसित भारत यंग लीडर डायलॉग का आयोजन करा है।
वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इस साल यौम आजादी के मौके पर लाल किले की फसील से दिवाली तक जीएसटी की नई सिलसिले की असलाहत लाने का ऐलान किया था। मुतालिका जीएसटी काउंसिल ने आम लोगों के रहन सहन में सहूलत पैदा करने की खातिर घरेलू इस्तेमाल की कई अशिया पर टैक्स शरहें कम करके 3 सितंबर को वजीर आजम के नजरिए को हकीकत की शक्ल दे दी। स्टेशनरी अशिया के सिलसिले में की गई असलाहत पर एक नजर इस रिपोर्ट के जरिए।
जीएसटी की नए सिलसिले की असलाहत के तहत सरकार ने तलबा और उनके वालदेन पर बोझ कम करने की खातिर अहम कदम उठाया है। नए ढांचे के तहत स्टेशनरी अशिया पर टैक्स बिल्कुल खत्म हो जाएगा। इनमें नोटबुक्स, ग्राफ बुक्स, इरेजर्स, पेंसिल, शार्पनर्स, चार्ट्स, नक्शे और ग्लोब शामिल हैं। ज्योमेट्री बॉक्स, कलर बॉक्स और पाउचेस वगैरह अब 5% टैक्स के जुमरे में आ जाएंगे, जबकि पहले ये 12% के जुमरे में थे। तलबा ने नई जीएसटी असलाहत लाने के सरकार के फैसले का खैर मकदम किया है। उम्मीद है कि इन अशिया पर जीएसटी कम किए जाने से तलबा और उनके वालदेन को मदद मिलेगी और उनका खर्च कम हो जाएगा। दिल्ली से सौम्या शरण की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं असगर अली।
हांगकांग ओपन सुपर 500 बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत के बैडमिंटन के सरकर्दा खिलाड़ी लक्ष्य सेन मर्दों के सिंगल्स के फाइनल में पहुंच गए हैं। उन्होंने सेमीफाइनल में ताइवान के चू तियन चेन को 23-21, 22-20 से हराया। दो बरस में उनका यह पहला सुपर 500 का फाइनल है। अब फाइनल में लक्ष्य सेन का मुकाबला चीन के ली शिफिंग से होगा। लिवरपूल में आलमी बॉक्सिंग चैंपियनशिप में आज भारत की खातून मुक्केबाज मीनाक्षी हुडा 48 किलोग्राम के सेमीफाइनल में मंगोलिया की मुक्केबाज को हराकर फाइनल में दाखिल होने वाली तीसरी भारतीय खातून मुक्केबाज बन गई हैं। मीनाक्षी ने चैंपियनशिप में अब भारत के लिए चौथा तमगा यकीनी कर लिया है। साबिक एशियाई चैंपियन और आलमी कप में चांदी का तमगा जीत चुकी मीनाक्षी ने 2023 में आलमी चैंपियनशिप में तमगा जीत चुकी मंगोलिया के मुक्केबाज पर 5-0 से शानदार जीत हासिल की। और आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने शिमाल मशरकी रियासतों मिजोरम, मणिपुर और आसाम का दौरा किया और कहा कि शिमाल मशरक मुल्क की तरक्की का इंजन बनता जा रहा है। वजीर आजम ने मणिपुर के शहर इम्फाल में 1,200 करोड़ रुपए मालियत के कई तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह किया और कहा कि सरकार रियासत में अमन इस्तेहकाम को यकीनी बनाने की खातिर लगातार काम कर रही है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने गुवाहाटी में डॉक्टर भूपेन हजारिका की 7 साल जयंती की तकरीबात में शिरकत की। म्यांमार के क्याकतौ इलाके में 2 प्राइवेट बोर्डिंग स्कूलों पर फौज के फजाई हमले में कम से कम 19 स्कूली तलबा मारे गए हैं। लक्ष्य सेन हांगकांग सुपर 500 बैडमिंटन टूर्नामेंट में मर्दों के सिंगल्स फाइनल में पहुंच गए हैं और इंग्लैंड में जारी आलमी बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारतीय खातून मुक्केबाजों को 4 तमगे मिलना तय है। इसके साथ ही खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।